ओम शांति। हम सभी का सौभाग्य है जो आज आदरणीय राजू भाई साहब हमारे बीच पधारे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन विशेष आज मातेश्वरी जी का स्मृति मास चल रहा है, तो इतना जरूर कहना चाहूंगी कि 1960 में मम्मा ने आपके घर में गीता पाठशाला का उद्घाटन किया था। आप उस समय से बाबा के बनकर रहे हैं और 50 साल से भी अधिक आप मधुबन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तीनों ही स्थान, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, उसमें जो फोटोकॉपी डिपार्टमेंट है आप उनके हेड हैं। ग्राम विकास प्रभाग के आप वाइस चेयरमैन पर्सन हैं। जब से भाई साहब को हम जानते हैं, इतनी सारी विशेषताएं उनसे सीखे हैं, तो भाई साहब के लिए विशेष रूप से आज कहना चाहेंगे कि सेवा में रमे, प्रेम में बसे, जिनका जीवन एक तपस्या है, हर कदम पर श्रेष्ठता हो, ऐसी उनकी प्रतिक्रिया है। मधुर वाणी, शांत स्वभाव और मुस्कान में अपनापन है, हर आत्मा को स्नेह मिले, यही उनके जीवन का धन है। सेवा और साधना के वो प्रतीक महान है, राजयोग की शक्ति को जिन्होंने जीवन में उतारा है, हर पल बाबा के आदेशों को दिल से स्वीकारा है। तो ऐसे भाई साहब आज बहुत सुंदर टॉपिक लेकर हमारे बीच में आए हैं, साइलेंस पावर और उनके प्रयोग। आदरणीय भाई साहब,
ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सभी शांति का अनुभव तो कर ही रहे हैं। शांति के सागर ने अपने बच्चों के लिए ऐसा सुंदर स्थान बनाया है जहां आते ही शांति का, शक्ति का, अपनेपन का, प्यार का अनुभव होने लगता है। सभी को मैं समझता हूँ शायद पहली बार यहाँ भट्टी करने का चांस मिला है। आंध्र प्रदेश है ना, कहाँ से हैं? वारंगल से हैं सभी। तो आप सबको ये गोल्डन लॉटरी मिली है और प्रकृति भी आपका स्वागत कर रही है। बादलों की रिमझिम में भट्टी करने का अपना ही रस है। आपके वहाँ तो बहुत गर्म है, तो बहुत अच्छी तपस्या करेंगे, साइलेंस की शक्ति को जमा करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरत है वर्तमान समय जब चारों ओर दुख और अशांति का वातावरण है। ऐसे समय पर शांति के फरिश्तों की जरूरत है। ऐसी शक्तियां जमा कर लो जो खुद तो शांत स्वरूप रहो ही, लेकिन शांति के प्रकंपन, उनके वाइब्रेशंस अशांत आत्माओं को भी शांत कर दें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक स्थान पर बैठे जब हम अपने शांत सुधर में स्थित होते हैं, शांति के सागर की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, तो शांत स्वरूप आत्मा के जो कंपन है वो अपने आप चारों ओर सेवा करते हैं। आपको कहीं जाने की, प्रयोग के लिए आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी पावरफुल स्थिति में बैठ जाओ। जैसे बल्ब बहुत पावरफुल अगर जलता है, कई वाट का होता है, तो दूर दूर तक उसकी लाइट भी जाती है और लाइट के साथ साथ उससे शक्तियां भी जाती हैं, माइट भी जाती है। तो बाबा ने हम सबको इस समय लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है और अपने स्वधर्म की पहचान दी है। बच्चे शांति आपका स्वधर्म है। कहते हैं ना कि एक बार एक रानी के गले का हार स्नान करते समय भूल गई, कहाँ रख दिया, तो चारों तरफ ढूंढ रही थी कहाँ है सबसे पूछ रही थी। तो किसी ने कहा, अरे भाई तुम बाहर क्यों ढूंढ रही है, तेरे गले में ही तो पड़ा है, शांति तेरे गले का ही हार है। तो सबके गले का हार शांति है, लेकिन ढूंढ कहाँ रहे हैं, चारों तरफ इधर उधर भटक रहे हैं। बाबा ने हमारा भटकना छुड़ा दिया। अभी भटकते तो नहीं है ना, भटकते नहीं है ना। बाबा मिल गया, शांति का सागर मिल गया, कहाँ भटकेंगे, किधर धक्के खाएंगे। तो जितना हम इस शांति की शक्ति को जमा करेंगे, क्योंकि जमा करने के लिए थोड़ा तो अटेंशन देना पड़ेगा। कोई भी चीज जमा करने के लिए स्टोर अच्छा चाहिए। अगर उस स्टोरेज में लीकेज हो तो स्टोर नहीं किया जा सकता। आज मान लो कोई चेक डैम बनाते हैं, या यहाँ पर हमारे पास कई डैम हैं, कितना भी पानी भरे। ज्ञान सरोवर जब बनाया गया तो वहाँ पर लक्ष्य रखा गया 3 डैम बना दें छोटे छोटे, जब बरसात पड़े तो भरे रहे, और उसके बाद वो पानी अपने बोरिंग्स में आता रहे। लेकिन देखा ये गया कि भर तो एक बार जाता है, लेकिन धीरे धीरे सीपेज निकलता जाता, कहाँ से जाता पता नहीं चलता। इंजीनियर्स ने बहुत खोजा, बहुत मेहनत की, कहाँ से जा रहा है, इसकी लीकेज बंद की जाए। थोड़ा सा भी कंट्रोल में आया, बहुत खर्चा हुआ, बहुत मेहनत लगी उस लीकेज को बंद करने की। अब शांति के सागर बाबा की याद में हम बैठते हैं, खूब अच्छी शक्ति आती है, स्टोरेज हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ी भी लीकेज होगी तो क्या होगा, उधर से आएगा इधर से निकल जाएगा, सेवा नहीं कर सकेंगे, उसको यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए लीकेज को बंद करना बहुत जरूरी है। किसी चीज की लीकेज है? व्यर्थ देखने की, व्यर्थ सोचने की, व्यर्थ बोलने की, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे काम की नहीं है, लेकिन कोई ने सुना दिया, देख लिया, या आजकल के साइंस के साधनों से कोई बात सोशल मीडिया में वायरल हो गई और उस पर हमारा अटेंशन चला गया, बस वही चिंतन, वही बार बार स्मृतियां आती हैं, वो अंदर से शांति के सागर की जो शक्तियां आ रही हैं, वो लीकेज बह रही है, अनुभव ही नहीं होता। फिर छोटी छोटी बातों में मन डिस्टर्ब हो जाता है, चंचल हो जाता है, कहते क्या करूं, मन एकाग्र नहीं होता। जब तक मन और बुद्धि को एकाग्र नहीं किया, तब तक शांति की शक्ति को जमा नहीं कर सकते, पावर आ नहीं सकती। और जरूरत वर्तमान समय की साइलेंस पावर की है। क्यों? चारों तरफ व्यक्ति के अंदर के जो संकल्प हैं बहुत व्यर्थ और नेगेटिव हैं। कौन कब किसको धोखा देगा, किसके अंदर क्या है, परखना बहुत जरूरी है। कहते हैं भगवान को जानना सहज है, इंसान को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट है। वर्तमान समय हमारी सेफ्टी का साधन परखने की शक्ति है, और वो परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही आ सकती है। क्योंकि जब हम मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, शांत हो जाते हैं, तो शांति से स्वच्छता आती है। जैसे आप मिसाल बताता हूं, कई मंदिरों के आगे एक कुंड होता है, कुंड पानी का कुंड रखते हैं, बहुत गहरा होता है और पानी उसमें इकट्ठा होता है, इधर उधर से भर जाता है। भरने के बाद जब वो स्थिर होने लगता है तो स्थिरता के बाद उसमें स्वच्छता आती है, क्योंकि उसके कण, उसकी मिट्टी जब पानी इकट्ठा होकर के स्थिर होने लगता है, उसकी मिट्टी, उसके कण जो चारों तरफ से उसके साथ मिक्स थे, वो बैठने लगते हैं नीचे। और जब वो बैठ जाते हैं तो पानी बहुत स्वच्छ हो जाता है और स्वच्छ होने के बाद स्पष्ट हो जाता है, बहुत कांच जैसा हो जाता है। 50-60 फुट गहरा पानी, 100 फुट गहरा पानी, उसके बीच में अगर कोई एक चीज डाल दो, पैसा डाल दो, थोड़ा सा 10 रुपया, 10 पैसे का सिक्का भी डाल दो, तो एक बड़ा रूप दिखाई देता है। क्यों हुआ? पहले स्थिर किया, एकाग्र किया, फिर स्थिर किया, फिर स्वच्छ किया, उसके बाद स्पष्ट हो गया। तो जहां ये मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी, भटकना बंद करेगी, कोई चीज इधर उधर की न देखनी है न सुननी, जो मेरे काम की नहीं है, जो व्यर्थ है, वो जो कीचड़ है इधर उधर का, ये क्या करता है वो क्या करता है, जिसको बाबा तीन शब्द देते हैं याद रखना। एक कहते हैं बच्चे पर चिंतन पतन की जड़ है। पर चिंतन क्यों करते हो, पर चिंतन माना दूसरों का चिंतन, पर दर्शन एक है चिंतन करना, दूसरा उनको देखना, दूसरों को देखना, और तीसरा है फिर आपस में उसकी लेन देन करना पर पंच। जो आत्माएं पर दर्शन पर चिंतन और पर पंच में सारा दिन रहती है, कईयों की आदत होती है बैठ जाएंगे बस इधर की उधर की, काम नहीं कुछ भी, टाइम पास करते हैं, और उसके कारण जो हमारी एकाग्रता होनी चाहिए साइलेंस पावर होनी चाहिए उसमें लीकेज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी व्यर्थ अंदर अंदर घूमता है कीचड़ चलता है, ये ऐसे है ये ऐसे है ये ऐसे, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को इस समय जब हम अंतिम बेला कह रहे हैं, जब हम रोज मम्मा की बातें सुन रहे हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, किसी समय भी कुछ भी हो सकता है, कोई बस भरोसा नहीं। हमारे मधुबन के एक बड़े अच्छे भाई बहुत अच्छी सेवा मानसरोवर में करते, अभी बोरीवली में गए, बॉम्बे में क्लास कराया, शाम को दूसरे क्लास में जाना था, बाथरूम में गए, कब गिरे कब शरीर छोड़ा पता ही नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक क्लास कराने गए थे, मिलने गए थे अपने परिवार से लौकिक वालों से, चले गए एक सेकंड भी और कब शरीर छोड़ा पता ही नहीं चला। तो वर्तमान समय हर घड़ी अंतिम घड़ी है, और ऐसे समय में हम सबको अपने संकल्प शक्ति को बचाने की जरूरत है, बहुत साइलेंस पावर चाहिए, मन बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाए एकाग्र हो जाए। जो व्यक्ति जिस रूप में मेरे सामने आया उसको अगर हम निर्णय नहीं कर पाए, उलझ गए क्या करूं कैसे करूं, माना हमको बाबा की टचिंग नहीं आ रही है। साइलेंस पावर से परखने और निर्णय करने की शक्ति आती है, और निर्णय करना और परखना तभी संभव है जब शांति के सागर परमात्मा से बाबा से हमारा कनेक्शन जुटा रहे, अलग ना हो जुदा ना हो, क्योंकि स्रोत वही है, हमारे पास कहां से आएगी शांति भी शक्ति भी आएगी कहां से अगर कनेक्शन टूटा हुआ तो। अगर पावर हाउस कुछ भी गड़बड़ करे, पावर हाउस से जो लाइन आ रही है उस लाइन अगर को लाइन को अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए और हम कहें पावर हाउस खराब हो गया, पावर हाउस खराब नहीं हो सकता, शिव बाबा तो पावर हाउस है, शांति का सागर है। लेकिन उस पावर हाउस से अगर मेरे तक पावर नहीं आ रही है, कहीं कनेक्शन ढीला है, कहीं लूज कनेक्शन है, या कहीं ज्यादा लोड डाल दिया गया, बहुत लोड डाल देते हैं, अब क्या होगा अब कैसे होगा, चिंतन चिंता फिकर भय डर चारों तरफ से दुख चिंता और भय इसकी लहर है, और इस लहर के अंदर अगर कोई बाबा का बच्चा चिंतन करते करते चिंता का रूप बना ले, पता नहीं कल क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बाबा कहता है जो होगा सब अच्छा होगा, लेकिन बच्चे अपने ऊपर अगर कोई बोझ उठा करके रख दे, तो जैसे लोड अगर डाल दिया जाए लाइन के ऊपर, चलाना है एक की एसी और हम दो एसी चला दें तीन एसी चला दें, ज्यादा लोड डाल दें तो क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा। कई ब्राह्मण आत्माओं के फ्यूज उड़ जाते हैं फट से, करंट कहां से आएगी, शांत कैसे रहोगे, शांति का दान कैसे दोगे। आप सब बाबा के बच्चे बहुत बहुत भाग्यवान हो, जिनकी सब जवाबदारी लेने के लिए बाबा कहता मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, पीछे दे दो मुझे, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों लेके चल रहे हो। संगम युग बाबा की गोद में बैठ करके चलने का युग है। सभी बाबा की गोदी में बैठते हो, अनुभव होता है बाबा शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, सब चिंताओं को हरने वाला बारा बाबा। फिर चिंता मुक्त कौन कौन है, वरंगल वाले सब चिंता मुक्त हो हैं? हैं पक्का? जो हैं हाथ उठाओ देखें, बेफिक्र, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करते हैं। अगर चिंता है तो कभी भी निश्चिंत स्थिति का अनुभव नहीं होता। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। किसकी चिंता करे, कोई अनहोनी है क्या? जब नाटक बना बनाया कल्याणकारी है और सब डायरेक्टर कौन, इसका डायरेक्टर कौन, इसका प्रिंसिपल एक्टर कौन, भले कहता है मैं भी बंधा हुआ हूं ड्रामा में, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसने रचा है ड्रामा वो कितना भी अपने को छिपाए वो छिप नहीं सकता। और कहता है मेरे रचे हुए ड्रामा में अगर तुम बच्चे कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो संशय बुद्धि हो, मेरे में निश्चय नहीं है, क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। जब तक किसी ब्राह्मण आत्मा ने अपनी निश्चिंत स्थिति नहीं बनाई तब तक साइलेंस की गहरी अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए मन बुद्धि को बिल्कुल चिंता मुक्त करो, हर दृश्य में, हर सीन में। आज बाबा कह रहा था साक्षी दृष्टा बनो, लेकिन साक्षी दृष्टा बनना का मतलब ये नहीं पुरुषार्थ ही करना छोड़ दो, दोनों बातें थी, साक्षी दृष्टा भी बनो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पुरुषार्थ भी करो। तो वर्तमान समय हम सबको विशेष चार बातों का अटेंशन देना है, साइलेंस पावर को एकत्र करने के लिए। पहले इकट्ठा हो तब तो हम दूसरों को देंगे, है सबके पास, अपने लिए भी चाहिए, परिवार के लिए भी चाहिए। आजकल की हिम्मतहीन आत्माएं ब्राह्मण परिवार में भी हैं जो कहती मेरे से मेहनत नहीं होती है, मेरी मेहनत आप ही कर दो। उस दिन बाबा कह रहे थे संडे की मुरली में कि बाबा को कभी कभी बड़ा रहम आता है, मेरे बच्चे मेहनत करते हैं मैं ही कर लूं, लेकिन मैं करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। कर्म सिद्धांत ये है जो करेगा वो पाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी हमको ही, बाबा या परिवार या दूसरे हमारे लिए नहीं करेंगे। क्या मेहनत करो, चार बातें बताता, अटेंशन देंगे बाकी मेहनत नहीं है। पहली मेहनत है जितना समय हो एकांत का अनुभव करो, एकांत, एक के अंत में जाने का अभ्यास, नहीं संगठन छोड़ के चले जाना। कई लोग समझते हैं एकांत माना जंगल में चले जाओ, एकांत माना धंधा धोरी छोड़ दो, हाथों से काम हो, दिल भगवान में लगे हुए, हथ कार्डे दिल यार्डे, शिव बाबा में बहुत बुद्धि लगी हुई रहे, एक के याद में, एक के प्यार में, एकांत में बैठ जाओ, खो जाओ, मन बुद्धि स्थिर है, एकाग्र है और बाबा के साथ मिलन हो रहा है। वो शक्तियां अपने आप आएंगी, यही मांगने की जरूरत नहीं है। अब कनेक्शन जुटा हुआ है तो करंट आ रही है, अगर कनेक्शन ढीला हो गया तो करंट बंद हो गई। तो शक्तियां लेने के लिए कनेक्शन जोड़ा, एकांत में बैठे, एक की याद में खो गए और करंट आई, शक्तियां आ गई, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, सब भरपूर हो जाए। कनेक्शन ठीक जोड़ना, लेकिन रबड़ सहित नहीं जोड़ देना, देह रबड़ है और उसको कनेक्शन जिसके जिससे जोड़ना है उसको रबड़ ही नहीं है, वो तो बेतार है, नहीं रबड़ है, तार है लेकिन ये रबड़ नहीं है, परमात्मा को शरीर नहीं है, वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, और आत्माएं है निराकार, लेकिन उन्होंने शरीर धारण किया है इसलिए उनके साथ ये रबड़ आ गए। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो, सबकी छुट्टी और दूसरों कैसे भी याद करो, लेकिन परमात्मा से एक संबंध जोड़ने के लिए आपको इस देह से न्यारा बनना पड़ेगा, देह से डिटैच होना होगा, और जितना डिटैच होकर अपने स्वस्वरूप में स्थित होंगे, कनेक्शन जुड़ेगा और वो करंट आएगी। इसलिए एकांत प्रिय हर ब्राह्मण को अभी बनने की जरूरत है। कार्य व्यवहार में रहो, बीच बीच एक याद में खो जाओ, और जब समय मिले सुबह शाम सब बातों से न्यारे बन करके ब्रकुटी की गुफा में बैठो, शांत सुधर में स्थित हो जाओ। तीन प्रकार की साइलेंस, पहले मैं चार बातें अलग बताऊंगा, तीन प्रकार की साइलेंस जिसका वर्णन बाबा समय प्रसमय करते हैं। एक साइलेंस है बिल्कुल डीप साइलेंस, सागर में लहराना, स्नान करना, उसका अलग आनंद है। बाबा से मीठी मीठी बातें किया, रूह रिहान किया, भाग्य की महिमा किया, उसका भी आनंद है, वो है लहरों में लहराना। लेकिन दूसरा है उसके सागर के तले में चले जाना, एकदम नाक कान सब बंद करके एकदम अंदर चले जाना, रतन मिलेंगे। सागर रतन देता है, ऊपर ऊपर तो कीचड़ भी होता है, कई प्रकार की चीजें होती। डीप साइलेंस, आप यहां तीन दिन में हो ना, उसका अनुभव करना। कहीं जाने की जरूरत नहीं, परमधाम सूक्ष्म वतन कहीं नहीं जाओ, यहां बैठ जाओ, ब्रकुटी में स्थिर हो जाओ, और एकदम संकल्प करते 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 ज्ञान सागर के, शांति के सागर के तले में चले गए, बाहर की हलचल समाप्त, कोई इधर उधर के संकल्प नहीं है, अनुभव है शीतलता का, शांति का, प्यार का, सुख का, सब अनुभव है, लेकिन समाया हुआ है, ऑक्सीजन भी है, नहीं तो कहां से श्वास तो ले रहा है ना। लेकिन वो डीप साइलेंस के बाद दूसरी साइलेंस है स्वीट साइलेंस, बहुत मीठी प्यारी। जैसे आप लोगों ने सागर के किनारे नहाने वालों को देखा होगा, विदेशी लोग आते हैं हमारे भारत में, कहीं भी सागर के जहां पर किनारे होते हैं तो पहले वो सागर के पानी में डूबते हैं, डुबकी लगाते हैं, तैरते हैं या डूबते हैं, भीगते हैं, फिर आकर के सूर्य के नीचे ऐसे किरणों के नीचे लेट जाते हैं, वो है स्वीट साइलेंस, बड़ा उसमें आनंद आता है। थोड़ी मीठी मीठी धूप आती है, लाइट आती है, उनकी चमड़ी कमजोर होती ना, वो शक्तिशाली बन जाती है, वो स्वीट साइलेंस, वो डीप साइलेंस, वो स्वीट साइलेंस। ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे बैठे हैं, सब प्रकार की शक्तियां आ रही, प्यार की, सुख की, शांति की, आनंद की, और उसमें बड़ा मजा आता है, वो परमानंद की अनुभूति होती है, लेकिन वो स्वीट साइलेंस। और तीसरी है फिर परमधाम की स्थिति, डीप साइलेंस। करते हो अनुभव, अभी यहां आए हो तो करना, और विशेष करने का समय जो है ना शाम को है, नमाज शाम का समय 6:30 से 8 बजे तक। क्लास कराने वाले भले कराते रहे, कमेंट्री वाले कराते रहे, उनकी भी परवाह नहीं करना, मुझे डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस। ओ सन, सन और सीड, बाबा है सीड बीज, और बीज रूप की स्थिति परमधाम की स्थिति है जिसमें समाया सब कुछ है लेकिन संकल्प ही नहीं है, डेड साइलेंस है परमधाम में। सूक्ष्म वतन में स्वीट साइलेंस का अनुभव होता है, बाबा की किरणें आ रही हैं, प्रेम मिल रहा है, ऐसे लगता है बहुत प्यार मिल रहा है, स्वीट साइलेंस का अनुभव। और साकार में फिर डीप साइलेंस, डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डीट साइलेंस कर सकते हैं अनुभव, योग में आए हो ना भट्टी करने, कर दिए। मैं शाम को होता तो कराता आपको साथ साथ, लेकिन इस समय कराऊंगा तो शायद कई लोग फिर निंद्रा देवी की गोद में चले जाएंगे। एकांत प्रिय बनने से तीनों प्रकार की साइलेंस का अनुभव होगा और बहुत अच्छी एकांत के साथ साथ एकाग्रता हो जाएगी, हिलना डुलना बंद। चार प्रकार की एकाग्रता भी है। एक, पहले शरीर एकाग्र हो जाए, हलचल बंद हो जाए। कई बार शरीर में कोई बीमारी होती है, दर्द होता है, कई होता है, हिलते डुलते रहते बैठते हैं लेकिन स्थिर नहीं होते, एकाग्र नहीं होते। पहले शरीर की एकाग्रता, जिस स्थान पर बैठो ऐसे छोड़ो शरीर को, ऐसे बैठना अलर्ट होके, ऐसे नहीं डल होके बैठ जाना, बैठो अलर्ट होके लेकिन स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए। फिर जो हमारे संकल्प है वो एकाग्र हो जाए, बुद्धि का भटकना एकाग्र हो जाए और दिल की भावनाएं एकाग्र हो जाए। चार चीजें, तीन बड़ी सूक्ष्म है, एक स्थूल है। पहले हमने शरीर को एकाग्र किया, शरीर की एकाग्रता के साथ साथ संकल्पों पर ध्यान दिया, कहीं नहीं जाना चाहिए, एक स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ। संकल्प है, शून्य नहीं है, जड़ नहीं है, मैं एक लाइट हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, इसमें एकाग्र हो जाओ। बुद्धि उसको देखे, मन से संकल्प कर रही, बुद्धि से वो देख रहा है, बहुत शक्ति आ रही है, लाइट वाइट आ रही, वो भी एकाग्र हुई। और हमारी दिल की भावनाएं भटक नहीं रही है, एक बाबा ही सब कुछ है, तू ही मेरा संसार है, भावनाएं भी एकाग्र हो गई। ऐसी एकाग्रता, एकांत प्रिय में तीन स्टेज बताई, एकाग्रता में आपको चार स्टेज बताई, करके देखना। और उसके बाद आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी बहुत जरूरत है, हम सभी धन की इकोनॉमी का तो बड़ा ध्यान देते हैं, भाई जितनी कमाई है उतना ही खर्चा करो, थोड़ा बचत करो। बाबा के बच्चे, अगर बाबा के बनने के बाद अपने घर को मैनेज नहीं कर पाते हैं, माना उनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। जितनी कमाई है उसको बहुत बैलेंस से चलाना है, खर्चे बहुत कम से कम हो, जो जरूरी खर्च करना है देखा देखी नहीं करना है। बाबा के बच्चे कहे हम गरीबी की रेखा के नीचे हैं, अच्छा नहीं लगता, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। जिसका पिता इतना दाता है, उसके बच्चों के पास कर्ज लेना पड़े, ध्यान देना, कर्ज मर्ज है। इकोनॉमी से चलो, जितनी कमाई है उतने ही खर्चे करो, बजट को सेट करो। ऐसे नहीं इसके पास ऐसी अच्छी गाड़ी आई है 25 लाख वाली तो मेरे पास भी होनी चाहिए, इसके पास ऐसे अच्छे पर्दे लगे हैं घर में हमारे पास भी होने चाहिए। किसी से भेंट करके इस बाबा की अमानत को व्यर्थ नहीं करना, जो कुछ है आपके पास प्रभु अमानत है ना। क्या आपने कहा, हे प्रभु जब आप आएंगे तन ये मन ये धन सब तेरा, अर्पित तेरे को। जब हमने अर्पित कर दिया, वो कहता मैं लेके क्या करूंगा, तुम इसको संभालो ट्रस्टी हो करके, ट्रस्टी होके संभालो, ईमानदारी से संभालो, एक भी पैसा व्यर्थ नहीं कर सकते हैं, जहां सफल हो सकता है वहां लगाओ जरूर, व्यर्थ नहीं करना। उसको बहुत इकोनॉमी से, धन की इकोनॉमी और ज्ञान धन की इकोनॉमी। इसलिए जहां वहां सुना रहे हैं, आजकल आंध्र प्रदेश में बहुत ध्यान देना पड़ता है, जहां है वहां सुना रहे, क्या जरूरत है। अच्छा चलो, विरोध करते मंदिर वाले इधर उधर, बैठो ना, योग करो ना। तुम जब तक कोई समझा नहीं तब तक तो विरोध करेगा ही ना। नया ज्ञान, नई धारणाएं, इतना ऊंचा जीवन बनाने की हिम्मत तो लोगों में चाहिए। इसलिए ऐसे नहीं जहां आया वहां ज्ञान लुटा दो, उसकी भी इकोनॉमी करो। ज्ञान खजाना है और सत्य ज्ञान है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत युक्ति युक्त समय पर समझ करके देना। इसलिए ज्ञान धन की भी इकोनॉमी करो। एक है स्थूल धन की इकोनॉमी, दूसरी है ज्ञान धन की इकोनॉमी, और तीसरी है अपने संकल्पों की और बोल की इकोनॉमी। जो है आप बोल रहे हैं ध्यान देना। बहुत बड़ी शक्ति है संकल्प की शक्ति, जिससे ब्रह्मा ने नई सृष्टि की रचना कर दी। आप सब किसकी रचना बैठे हो? संकल्प की रचना। ब्रह्मा के संकल्प से इतने बच्चे पैदा हुए। जब साकार में थे, मुख की रचना हो रही थी, वो तो कहां है? तो बहुत थोड़े थे, 1 लाख भी नहीं थे जब हम लोग आए हैं। अव्यक्त होते ही जो उस समय संकल्प ब्रह्मा ने किए थे, देश विदेश में इतने बच्चे निकलेंगे, इतने सब आएंगे। आज ब्रह्मा बाबा के संकल्प से 140 देशों में 14 लाख से भी अधिक परिवार बाबा के बच्चे इस संकल्प की सृष्टि रच दी। ब्राह्मण सृष्टि रची, और ब्राह्मण सृष्टि ही स्वर्ग में जाएगी सत्युग में। ऐसी रचना शिव बाबा रचयिता है, लेकिन किया किसे? ब्रह्मा के संकल्पों से रची गई सृष्टि। हम सभी जो आया सोच रहे हैं, संकल्प की एनर्जी को बचाओ। बहुत वैल्यूबल संकल्प है, क्यों सोच रहे हैं? जो जरूरी है बाबा कहता जरूर सोचो। एक एक संकल्प पर हमारा ध्यान हो, क्या सोच रहे हैं हम? कहते हैं सोचने के पहले सोचो साथ क्या जाएगा। सोचने के पहले सोचो। सोच रहे हैं, एक दिन मैं यहां बैठा था आंगन में, हमारे जगदीश भाई की बुद्धि बहुत तेज थी, यहां चक्कर लगा रहे थे, मेरे साथ सामने खड़े हो गए और अचानक मेरे से पूछ दिया, तुम क्या सोच रहे हो? तो मेरे मुख से निकला कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा, और वो खड़े होकर के मेरा 15-20 मिनट क्लास करा दिया। ऐसा कभी हो सकता है? ब्रेन अगर ठीक है तो कोई सोच ही नहीं रहा हो। अरे संकल्प तो सारा कल्प चलते हैं, संकल्प के बिना कल्प ही नहीं बन सकता। उन्होंने इस पर बहुत लंबा क्लास कराया। संकल्प चल रहे हैं, सोच तो हम रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं? ये मन कौन सी खिचड़ी पका रहा है? कम से कम इस पर अटेंशन तो दो, ध्यान तो दो। इकोनॉमी करो, बचाओ। मैं आपको अनुभव से बताता हूं, जब से मैंने ये पक्का किया कि मुझे नहीं ऐसी इधर उधर की बातें सोचनी, संकल्प की सिद्धियां मिलती है। आवश्यकताएं जो है संकल्प उठता है और काम हो जाता है। न बोलने की जरूरत है, न मांगने की जरूरत है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपने आप अगर संकल्प की शक्ति जमा है तो जो श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प हैं वो अपने आप ड्रामा की सीन पर सामने आ जाते हैं। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो आवश्यकताएं हैं संकल्प उठेगा, आपका काम हो जाएगा, ये संकल्प सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। संकल्प की इकोनॉमी के साथ साथ आप सभी केवल मधुबन में नहीं मौन रखो, ध्यान दो। जो जरूरी है वही बोलना है, और जितना जरूरी है उतना ही बोलना है। बोल बड़े अनमोल हैं। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। आज जितने सेंटर्स पर या घरों में टकराव हो रहे हैं उसका कारण वाणी पर कंट्रोल नहीं। जो आया बोल दिया। समय देखो, सामने वाले की स्थिति देखो, आवश्यक है या नहीं है। बोलने से उसका उमंग उत्साह बढ़े, वो बोल हमारे तीर की तरह उसके दिल को दुखाने दे, डिस्टर्ब न कर दे। हर ब्राह्मण आत्मा को वर्तमान समय इस बोल की बहुत बहुत इकोनॉमी करने की जरूरत है। फिर कहेंगे भाई हमारे लिए कुछ दो शब्द तो बोल दो, सुनना चाहेंगे। आज हम क्या कहते थे दादियों को, दादियां चुप हो गई, दादी दो शब्द तो बोलो, वरदान तो दे दो एक। इतने बोल अनमोल, जो बोल दें सिद्ध हो जाए। उनके बोल सुनने के लिए कितना लालायित रहते हैं बड़ों के, ये हमारे निमित्त हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे लिए कुछ आशीर्वचन करें, क्योंकि उनके बोल ही आशीर्वाद बन गए हमारे लिए। कैसे बने? उन्होंने इकोनॉमी की, बचाया अपने बोलों को। गुलजार दादी ने अपनी संकल्प की बोल की इतनी इकोनॉमी की जो आज हम सबको 48 साल तक बाप और दादा दोनों ने हमारी पालना की। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा के लिए आए, गुलजार दादी के तन में दो आत्माएं और एक साथ, और इतना रात रात भर ज्ञान दिया, पालना दी। कितनी एनर्जी थी बच्ची की, गुलजार दादी की, जिस एनर्जी को भगवान ने यूज कर लिया। एक बोल नहीं बोला होगा कभी किसी के आगे, चुप मुस्कुरा देना। संकल्प और बोल की एनर्जी भगवान के काम में आई। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, करो इकोनॉमी इसकी। भट्टी से संकल्प लेना कि इसकी मुझे इकोनॉमी करनी है। तो स्थूल धन, ज्ञान धन, संकल्प और बोल का धन, इन चारों की अगर इकोनॉमी कर देंगे तो साइलेंस पावर अपने आप जमा हो जाएगी। और चौथी बात है, जो हमारी बहुत सारी शक्तियां नष्ट होती हैं, वो कारण है एक के सिवाय दूसरों में बुद्धि को लटका देना। हम सब एक वृत्ता हैं, एक बाबा दूसरा न कोई। चाहे वो कितनी गुणवान हो, चाहे कितनी बुद्धिमान हो, चाहे कितनी स्नेही हो, चाहे सहयोगी हो, भगवानों वाच्य बच्चे किसी भी देहधारी में लटकना नहीं। एक नामी और एक वृत्ता बनो, एक वृत्ता बन जाओ, आपके पास साइलेंस पावर अपने आप जमा हो जाएगी। और जहां वृत्तियां किसी देहधारी में अटक गई, दो जगह से हिसाब किताब बनते हैं, बहुत ध्यान देना। किसी व्यक्ति विशेष पर प्रभावित होकर के उसकी तरफ विशेष अटेंशन देना, लगाव झुकाव, ये हमारी एनर्जी को खत्म करता है। कभी हम शांत नहीं रह सकते, साइलेंस पावर आ ही नहीं सकती अगर किसी देहधारी के साथ हमारी अटैचमेंट हो गई तो। एक वृत्ता, एक बाबा ही संसार है, और मम्मा ने इसी एक बात से नंबर वन लिया, नंबर वन बन गई, ब्रह्मा से भी आगे चली गई। इतनी एक वृत्ता, बस मेरा तो एक ही बाबा, दूसरा ना कोई। न अपनी महिमा सुनी, न किसी की महिमा विशेषता पर प्रभावित हुई। एक तरफ है प्यार स्नेह हो जाना, प्रभावित हो जाना, और दूसरी तरफ है किसी से नफरत कर लेना, लगाव कर टकराव में आ जाना। हम सब बाबा के बच्चों को, एक वृत्ता वही है जो किसी से भी स्पेशल लगाव झुकाव में नहीं आती, और किसी से भी टकराव में नहीं आती। सब बच्चे, सब बच्चे, आपकी सब एनर्जी जमा हो जाएगी, साइलेंस पावर आ जाएगी। और जब बैठ जाओ, जो संकल्प करो, साइलेंस पावर के बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग किए जा सकते हैं। कोई बीमार है, कोई बहुत दुखी है, पुकार रहा है, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में बैठ जाओ, हमारे शांति के प्रकंपन उसके दुख को दूर करेंगे, अपने आप जाएंगे। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले जमाने में जब सिद्धियां प्राप्त हमारे संत लोग थे, ऋषि मुनि थे, ऐसे बैठ जाते थे गुफा में, बैठे हैं यहां और सेवा कर रहे हैं अपने भक्तों की। उनको अनुभव हो रहा, कोई मेरे पास आए, कोई मेरे माथे पर हाथ फर के फेर के गए, कोई ने मुझे सांत्वना दी, कोई ने मुझे दृष्टि दी, मेरी रक्षा की। कहां गए? बैठे तो एक जगह थे, लेकिन वो मन बुद्धि की एकाग्रता और साइलेंस की पावर से वो आत्माएं कहीं भी पहुंच सकती थी। अब समय आ रहा है उस सेवा का। जब भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे, इधर उधर सेवाएं बंद हो जाएंगी, क्या करोगे? सकाश देने की सेवा। इतनी एकाग्रता, इतनी साइलेंस, वो प्रकंपन चारों तरफ फैलाना। इतनी पवित्र आत्मा है आज हमारे पास, जैसे यहां बैठी 150-200, सब साइलेंस में एक संकल्प में स्थित हो जाओ, अपने आप वो शांति के किरणें पहने लगेंगे, सन्नाटा हो जाएगा। जैसे बाबा मिसाल देते ना, जब कोई संत, कोई बहुत बड़ा तपस्वी शरीर छोड़ता है तो उसके चारों तरफ से सन्नाटे की लहर फैल जाती है। शां लाडू की थी, भाई जी थोड़ा सा क्लास करा दो, थोड़ा मिल लो इनसे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो टाइम था नमाज शाम का 6:30 से 7:30 का, इधर योग चला था, सब जगह योग चलता है यहाँ शाम को 6:30 बजे, शांति स्तंभ पर, बाबा कमरे में, कुटिया में, इधर बाहर अंदर सब योग में थे। अब वो आई थी कि हमको जानना है, आप मिल लो। तो मैंने थोड़ा सा बात किया, क्लास कराई, कराते कराते एकदम से ऐसी करंट निकली जैसे यहां से ना वो बोल सके ना मैं बोल सका, चुप एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। तुमन 7 मिनट ऐसे लगे कि वहां उसे ऐसी आवाज आती ना साइलेंस की। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने कहा भाई क्या होगा, सब चुप, कोई नहीं कुछ बोले। वो यहां की करंट, यहां की साइलेंस की किरणें केवल यहां तक सीमित नहीं रहती हैं। जहां पर भी बच्चे बाबा के हैं, जो कोई ऐसे प्यार से याद करते हैं, कोई अशांत हैं, कोई दुखी हैं, भक्त हैं या बच्चे हैं, कोई भी हैं, यहां की एकाग्रता से जो साइलेंस की पावर जाती है वो उन आत्माओं का सहारा बनती है। यह है योग का प्रयोग, यही है साइलेंस की शक्ति का प्रयोग, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए। जरा भी संकल्पों में हलचल है ना, इधर उधर के व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते हैं तो पावर इकट्ठी नहीं होती। और संगठित रूप में अगर 10 लोग 15 लोग आप यहां से जाने के बाद एक संकल्प करना, कितनी भी कारोबार है इस समय, मुझे अपने लिए और अपने इस प्रकृति के लिए, अपने परिवार के लिए कम से कम 1 घंटा नमाज शाम के समय तपस्या करनी ही है। हो सकता है, कर सकते हैं। शाम को 6:30 से 7:30 करो, 7 से 8 करो, उस समय ऐसा है जो आप बहुत अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सी आत्माएं अशांत दुखी हैं जिनको शरीर नहीं मिले हैं, और अचानक जब इतनी सारी संख्या में लोग मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे, मान लो आज प्लेन क्रेश हुआ, 250 कितने 240 50 वो गए, 50-60 और चले गए, फिर 300 लोगों ने शरीर छोड़ दिया एक साथ, जन्म तो नहीं मिलेगा ना जल्दी, शरीर कहां इतने। तो आत्माएं एक एक में 4-4 प्रवेश कर जाएंगी, कितना परेशान कर देंगी, खुद अशांत हैं, दूसरों को अशांत करेंगे। क्या हमारे पास वो शक्ति जमा है जो उनको मुक्ति दे सके, जब उनको शांति दे सके? इस बात को कोई विचार करते? और ये तो बहुत होने वाला है, बाबा कहता दर्दनाक सीन है, कलयुग अंत है। आप विचार करो, अगर आज 800 करोड़ आत्माएं हैं, 8 अरब हो रही है, उससे भी ज्यादा है सर, और 9 लाख बचेंगे, सतयुग के अंदर, चलो जन्म देने वाले 18-20 लाख और होंगे, अगर 30-40 लाख इतने में से बचेंगे सतयुग की शुरुआत में, तो बाकी सब जाएंगे तो नंबर वार ऊपर ना, झुंड में थोड़े से जाएंगे, फिर बाद में जाएंगे, फिर बाद में जाएंगे, लेकिन जो रह जाएंगे उनका क्या हाल होगा? बचेंगे वो भी शांत नहीं रहेंगे, कि उनको इतना बड़ा दुख दर्द वाली सीन दिखाई देगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी अंतिम समय है, और इस अंतिम समय में आप सभी साइलेंस पावर को जमा करो, और उसको अपने लिए भी प्रयोग करो, अपने शरीर पर प्रयोग करो, अपने संस्कारों पर प्रयोग करो, अपने संबंधों पर प्रयोग करो, और अपने सब पूरे परिवार के प्रति, बेहद परिवार के प्रति। हमारा छोटा परिवार नहीं है, बहुत बड़ा कुटुंब है, हम एक पिता के बच्चे हैं, जो हमारा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसके बच्चे सब पूर्वज हैं, और पूर्वजों को अपने परिवार के प्रति बहुत चिंता रहती है, सबका भला हो, सब सुखी, सबको शांति मिले, शक्ति मिले, सब इन परिस्थितियों को, इन पेपर्स को सहज पार कर लें, उनमें सहन करने की शक्ति आए, सामना करने की शक्ति आए, संभालने की शक्ति आए, उन सब के लिए हम सबको विशेष मेडिटेशन की जरूरत है, साइलेंस की पावर की जरूरत है। तो इसके लिए आप सब एकाग्रता का अच्छा अभ्यास करना, मन बुद्धि को एकाग्र करके अपने चार बातें और बता देता हूं। पहला है स्वरूप का दर्शन, आत्मा का स्वरूप। स्वरूप क्या है? लाइट माइट स्वरूप है। दूसरा है आत्मा का स्वधर्म, शांति प्रेम पवित्रता। आत्मा का स्वधर्म है, निजी धर्म है, हमारी जाति पाति वाले हम थोड़ी हैं, कोई लौकिक दुनिया को तो बाबा ने भुला दिया। हमारा स्वधर्म शांति है, प्रेम है, पवित्रता है। तो स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, बाबा का घर, हमारा घर, अपना निजी घर, और उस स्वदेश में रहने वाला हमारा पिता, स्वपिता। अगर योग अभ्यास में ये चारों स्थिति बन जाएं, स्वरूप का चिंतन, स्वधर्म की स्मृति स्थिति, स्वदेश में जाना और स्वपिता की किरणें लेना, इससे सब साइलेंस पावर जमा हो जाएगी। और वो पावर तो कोई देने की जरूरत नहीं, जिसके पास पावर है वो अपने आप जाएगी, आपकी दृष्टि से जाएगी, आपके वाइब्रेशन से जाएगी, आपके बोल से जाएगी, आपके चलने से जाएगी, जिधर चलेंगे उधर ही शांति की किरणें निकलेंगी। कई कहते हैं ना, बड़ी अच्छी, पता नहीं यहां से निकले ना, बड़े अच्छे वाइब्रेशन थे, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, उनके चलने से फिरने से बोलने से मुस्कुराने से भी लोगों को अनुभव होता है। लेकिन ऐसे आंतरिक स्थिति जब होगी तब तो होगा, बाह्य स्थिति से नहीं होगा। तो आप सब बाबा के योगी बच्चे हैं, पवित्र बच्चे हैं, खूब अच्छी तरह से यहां से 3 दिन में भट्टी करके, तपस्या करके तैयार होके जाना, ठीक है? ओके, ओम शांति। अभी 3 मिनट के लिए उस साइलेंस का गहरा अनुभव करो। ये चार बातें जो लास्ट बताई ना, स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्वरूप को देखो अपने तीसरे नेत्र से, मैं एक लाइट हूं, एक चमकता हुआ सितारा हूं। स्वधर्म में स्थित हो जाओ, मैं शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, और शांति के सागर बाप की किरणें शांति धाम से मेरे ऊपर आ रही है। तो शांति धाम की स्मृति, शांति सागर की स्मृति, शांति स्वधर्म की स्मृति और शांति स्वरूप की स्मृति। बैठ जाओ, ऐसे 3 मिनट के लिए शरीरी हो जाओ।
एक हाथ की ताली से भाई साहब का थैंक्स करेंगे, शुक्रिया मानेंगे। और जो भाई साहब ने साइलेंस पावर के लिए बताया, एकाग्रता, स्थिरता, स्वच्छता और स्पष्टता, उसकी गहराई में जाएंगे और संकल्प करेंगे। जो भाई साहब ने कहा 6:30 से 7:30 का नौमा शाम का योग हम सभी मिलकर करेंगे, तो जाने के बाद भी कौन कौन करेगा थोड़ा हाथ खड़ा करके भाई साहब को भी बता दे। थैंक यू भाई साहब।